ओम शांति। हम सभी के समक्ष शिलू दीदी जी उपस्थित है। पहले हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति गहरी रुचि रही, इसलिए 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में इस राज्यों की अभ्यास करती रही, जिससे आपने मानसिक एकाग्रता एवं कुशाग्र बुद्धि तथा शक्ति के विकास का अनुभव किया। 1969 में मुंबई मुक्त विश्वविद्यालय से साइंस ग्रेजुएशन होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप मानवता की ईश्वरीय सेवार्थ इस संस्था में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गई। 1970 से 74 तक आपने बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। 1974 से 1976 तक अफ्रीका के कुछ देशों में और मॉरिशियस में आपने ईश्वरीय सेवा कर अनेक सेवा केंद्र की स्थापना के निमित्त बनी। 1976 से माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही है, जिसके द्वारा अब तक लाखों लोग वैज्ञानिकों, न्यायवादी, राजनीतिज्ञों, चिकित्सकों तथा अनेक वर्गों के व्यक्तियों ने लाभ ले चुके हैं तथा अब भी राजयोग सीखने के लिए हजारों की संख्या में लोग हर वर्ष माउंट आबू आते रहते हैं। आपने पांचों ही महाद्वीपों में यात्राएं की है, जहां अपने प्रवचनों के माध्यम से अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। आपकी स्पष्ट तार्किक तथा आत्मिक स्नेह मधुर वाणी की बढ़ती हुई चाहना को लेकर राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कॉमेंट्रीज तथा कई विषयों की लेक्चर्स की ऑडियो वीडियो सीरीज भी उपलब्ध है। हिंदी, सिंधी, इंग्लिश भाषा में आप धारा प्रवाह बोलती तथा साथ में सफल अनुवादक भी है। वर्तमान समय पर आप एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम सुनेंगे शिलू दीदी जी द्वारा माया की धोखा से कैसे बचे। ओम शांति।
ओम शांति। शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को अपनी पहचान दी है, अपनी रचना की भी पहचान दी है, पर साथ साथ बाबा ने हमको और भी किसी बात की पहचान दी है, और वो है माया की पहचान। हम ये कहते हैं कि परमात्मा रचयिता और रचना की पहचान खुद ही देते हैं। वो जो है, जैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ है, वो अपनी पहचान खुद ही देता है। हम आत्माएं नहीं जानती, हमारी पहचान वो ही देता है, क्योंकि हम अपने को भी नहीं जानते थे। फिर ये सृष्टि चक्र की पहचान भी बाबा ही देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता है। तो रचयिता और रचना की पहचान तो बाबा ने दी है, और हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है ज्ञान का। आदि मध्य अंत को हम समझ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ माया की भी पहचान बाबा ही देते हैं, क्योंकि इस संगम युग पर भगवान के बच्चे और माया दोनों की बड़ी युद्ध है। सत्युग त्रेता में तो माया है ही नहीं, द्वापर कलयुग में तो माया का राज्य ही है, तो उसके अधीन है, तो उनसे लड़ेंगे भी क्या, संघर्ष भी क्या करेंगे। लेकिन संगम युग पर स्वयं भगवान हमें माया से लड़ना सिखाती हैं, और इसी की ही यादगार शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई दिखाई है, और यही है उसका फल की परिणाम की अधर्म पर धर्म की सदा विजय होती है। तो फिर से माया पर जीत पाकर जगत जीत बाबा के बच्चे बनते हैं। तो क्यों नहीं हम, क्यों ये कहते हैं कि माया की भी पहचान सृष्टि में किसी को नहीं है, माया के तो पूरे मुरीद बन गए हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग कि माया भी हमारी दुश्मन है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात, माया की परिभाषा ही दूसरी मान ली है लोगों ने। किसी के पास बहुत धन संपत्ति है तो कहेंगे इसके पास बहुत माया है, यानी धन बहुत है। अब उसको जीतने की तो बात ही नहीं है, किसके पास धन बहुत है तो अच्छी बात है, भाग्यवान है वो, तो धन को माया समझ लेते हैं, पर माया को फिर इसमें जीतने की तो बात ही नहीं है। या तो फिर स्त्री माया है, बच्चे माया है, पत्नी माया है, ये बच्चे माया कह करके सन्यासी घर बार का त्याग कर लेते हैं, माया समझते हैं। तो माया किसको कहेंगे ये भी पता नहीं है। बाबा ने तो आकर के माया की ही परिभाषा नहीं दी है, पर साथ साथ धन क्या है, बच्चे क्या है, पत्नी क्या, उसकी भी परिभाषा दी है। धन क्या है, वो तो जीवन में आवश्यक है, लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे कि सतयुग में माया है, वहां तो माया है ही नहीं, पर धन तो है ना, साक्षात धन की देवी लक्ष्मी विराजमान है, तो धन की तो कोई कमी नहीं होगी, पर माया है ही नहीं। कोई कई स्त्री माया है, तो बाबा ने स्त्री की बड़ी सुंदर पहचान दी है, नारी तो एक शक्ति है, नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलती है, नारी जब श्रेष्ठ है, महान है, ऊंच है, तो सारा संसार ऊंच है, महान है, श्रेष्ठ है। जब नारी का पतन होता है तो सारे संसार का पतन होता है। जहां नारी है वहां देवताओं का वास है, नारी है तो घर की शोभा है। नारी के लिए तो बहुत कुछ बाबा कितनी ऊंची बातें कहते हैं। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि भाई लोग अपनी अपनी कमेटी बनाते हैं, लेकिन कमेटी बनाते हैं तो ईगो आ जाता, अभिमान, मैं बड़ा हूं, तो आपस में लड़ते रहते हैं, पर बीच में बहन होनी चाहिए, तो बहन जो होगी वो उनको शांत करेगी। भाई गाइड बन के बहनों का गाइड ना बने, पर गार्ड बन के बहनों की रक्षा करे। गाइड तो एक बाबा ही है, और बहनों को आगे रखेंगे तो भाई भी सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन क्यों सुरक्षित रहा, इतने सारे तीर चल रहे थे, और भीष्म पिता में उनके सामने था, लेकिन अर्जुन को कोई बाण नहीं मार सका भीष्म पिता में, क्योंकि बीच में शिखंडी आ गई तो उसको बाण नहीं चला सका। और अंत में तो नारी के आगे ये बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, सन्यासी सब झुकेंगे। बाबा ने बहनों को आगे किया है, और नारी का उत्थान है तो विश्व का उत्थान है, उससे स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो देखिए नारी की क्या ऊंची परिभाषा भगवान आकर देते हैं, और इंसान ने नारी को कितना गिरा दिया। बच्चे तो बेचारे पवित्र फूल हैं, उनका क्या दोष? उनको कोई माया कहे, वास्तव में ये भी गलत है, वो तो कितने इनोसेंट है, उनको माया क्या है पता ही नहीं। तो माया क्या है, बाबा ने उसकी परिभाषा दी है कि धन माया नहीं है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति, लोभ, इच्छा, ये माया है। जितना मिलता जाता है उतनी इच्छा और बढ़ती जाती है, कभी प्यास बुझती नहीं है धन से। तो जहां इच्छाएं बनी है, बनी रही है, वहां तो माया है। बच्चे माया नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति बहुत मोह है, तो वो माया जरूर है। मोह माया है, लोभ माया है। स्त्री माया नहीं है, लेकिन स्त्री के प्रति काम वासना, ये माया है। उनके शरीर का उपभोग करना, ये माया है। उनको भी आत्मा समझो तो कोई माया नहीं है। आज भी बाबा ने कितना सुंदर कहा कि युगल रूप सामने आए, ऐसे बहादुर, महावीर, महारथी, ऐसे युगल हो जो साथ में रहकर पवित्र होकर दिखाए, और सन्यासियों को भी ये चैलेंज करे कि हम साथ में रहकर पवित्र रह सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। लेकिन सन्यासी लोग मानेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि 1987 में हम लोगों ने मधुबन में संत सम्मेलन रखा था, और हरिद्वार के सन्यासी आए थे उसमें, हरिद्वार, बनारस के बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। तो उनके आगे कई प्रोग्राम हुए, लेकिन एक प्रोग्राम ये भी था कि जो भी बाल ब्रह्मचारी युगल हैं, उन सबको बुलाया था मधुबन ने। तो उस समय 20 पुराने पुराने बाल ब्रह्मचारी युगल, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल से चलने वाले, मतलब पुराने बहुत, उनको बुलाया था कि आप इनको अपना अनुभव सुनाओ, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि ये युगल रूप में सामने आए और दुनिया को कहे कि घर बार, ये ब्रह्मा कुमारियां घर बार नहीं छुड़ाती है और ये घर को स्वर्ग बनाती है, पर दोनों पहिए साथ चले तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सन्यासी तो छोड़ करके चले जाते हैं, बिचारी को अपने जीते जी विधवा बना के छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, छोड़ो भी कुछ नहीं, घर गृहस्थ में रहो लेकिन पवित्र रहो। तो क्या हुआ कि वो बाल ब्रह्मचारी जो युगल थे पुराने पुराने, उनके आगे इनका परिचय कराया, बना सन्यासियों के आगे इनका परिचय कराया कि ये कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए इतने सालों से पवित्र हैं। तो सचमुच वो मानने कोई तैयार नहीं थे, मानने कोई तैयार नहीं थे। हम नहीं मानते, शास्त्रों में ये कहीं लिखा ही नहीं है, अब शास्त्रों को ही मानेंगे। तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना इतना सुंदर अपना अनुभव सुनाया कि हम कैसे रहते हैं, कैसे भगवान ने हमें वो शक्ति दी है। और हम उस शक्ति के आधार से रह सकते हैं। तो आखिरकार 2 घंटे तक इतनी बहस चली, आखिरकार वो सन्यासी झुक गए और सचमुच उनको धन्य कहा। सच पूछो तो ये किसकी शक्ति है? ये इंसान की शक्ति है ही नहीं। तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, वो क्यों नहीं समझते हैं ये? क्योंकि यहाँ ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, ये किसको पता नहीं है। भगवान को हमने बुलाया, हे पतित पावन आओ, आज की मुरली थी, हे पतित पावन आओ। महात्मा गांधी ने इतना कहा, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, खुद पवित्र रहता था। महात्मा गांधी की पुस्तक में आता, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें एक विचित्र बात उन्होंने लिखी, स्वयं लिखी, कि मैंने ये सोचा था कि अंग्रेजों को हम तब भगा सकेंगे इस देश से जब हमारे अंदर सत्यता की शक्ति होगी, अहिंसा की शक्ति होगी, और उसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति को उसने बहुत महत्व दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उसने बहुत प्रेरणा ली थी। तो कैसे इस ब्रह्मचर्य की ताकत से ही हम भारत से इन अंग्रेजों को भगाएंगे, ये शक्ति हमारे जीवन में हो। तो उसने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊं। कस्तूर उनकी पत्नी का नाम था, जिसको बाद में उसने कस्तूर बा कहा, बा माना माँ, कस्तूर था पहले उनका नाम। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस कस्तूर को पवित्र दृष्टि से देखूं, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। परंतु जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मैंने प्रेरणा ली कि उसने अपनी पत्नी को माँ कहा, शारदा माँ, जब भी कोई शिष्य उनके पास जाता था कहता था माँ से पूछो, एक तो शारदा माँ और दूसरा काली माँ, माँ को ही अपना इष्ट माना, माँ का ही पुजारी था अगर उस हिसाब से कहें तो। इसलिए जब उसने शारदा को माँ का रूप कहा तो उसकी दृष्टि पवित्र हो गई। तो महात्मा गांधी ने इससे प्रेरणा ली और कस्तूर को बा कहा, तब उसकी दृष्टि बदल गई। इसी प्रकार हम देखें ब्रह्मा बाबा की कैसे दृष्टि एक सेकंड में बदल गई। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता बने, उनकी भी अपनी लौकिक पत्नी थी यशोदा। तो बाबा ने कैसे अपनी दृष्टि बदल दी? ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर मेहनत की जरूर। बाबा कई बार अनुभव सुनाते हैं कि बाबा दीवारों पर शुरू शुरू में लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, जगह जगह दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा। यशोदा भी तो पढ़ती होंगी। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, तो बहू में बहुत मोह था बाबा को, बहुत मोह, बेटे से भी ज्यादा बहू में मोह था, क्योंकि वो बाबा की बहुत आज्ञाकारी थी, दादी ब्रिज इंद्रा जो महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज थी। तो बहुत मोह था, लेकिन वो मोह कैसे तोड़ा, कैसे ये सब रगे तोड़ी? बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा का पाठ पक्का किया और दृष्टि में आत्मा का पाठ पक्का किया, उनको उसी रूप में देखा। हम कई बार सोचते हैं, ऐसे मन में विचार आया कि यशोदा को समय लगा होगा बाबा को बाबा बाप स्वीकार करने में, या बाबा को समय लगा होगा उनको बेटी स्वीकार करने में। हाँ, वह तो बाप बेटी हो गए, तो कहाँ संबंध ही एकदम एक बदल गया है। उस समय एक चमत्कार हो गए, देह के संबंध सब बिगड़, सब एक सेकंड में धक से खत्म हो गए, क्योंकि बाबा की तरफ सबका आकर्षण था। तो कौन बाप, कौन माँ, कौन बेटी, कौन पत्नी, कौन सास, कौन बहन, सब एक सेकंड में खत्म। मम्मा की लौकिक माँ, लौकिक माँ अपने बेटी को माँ कह रही है और मम्मा उनको नाम से पुकार रही है। उनका नाम रोचा था, रोचा, तो माँ को कहा रोचा और माँ कहती है मम्मा बेटी को। तो देखो लौकिक संबंध सब बदल गए, नया जन्म हो गया। कैसे बाबा ने सबकी दृष्टि एक सेकंड में बदल दी। अभी दुनिया वाले बल कहते ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, हम कहते भाई बहन बनाती थोड़ी, कोई जादू की छड़ी है क्या, लो बन जाओ भाई बहन। अभी मैं उड़ीसा गई थी, भुवनेश्वर गई थी, तो भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम था, उससे मिनिस्टर आया था, तो उसकी जो पत्नी है वो ज्ञान में चलती है 4-5 साल से, और पति को बहुत बुलाती रहती थी, कहती थी चलो चलो चलो, तो आखिर प्रोग्राम में आया। तो प्रोग्राम में आया तो हर वक्त अपनी पत्नी को कहता है बहन बहन बहन, मुझे इसने बहन बना दिया है, माना मुझे इसने अपना भाई बना दिया है, तो ये मेरी बहन हो गई। सारी सभा में यही बात कह रहा है कि इसने मुझे अपना भाई बना लिया, वो मुझे भाई कहती है, मैं उसको बहन। मिनिस्टर, वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये ओडिशा का, तो अभी फिर उसको समझाया कि कोई बहन भाई बनाते नहीं है। फिर भाषण में ये बताया, ये कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, लेकिन भगवान तो हमको इनसे भी ऊंचा ले जाते हैं। आत्मिक दृष्टि दिला करके भाई भाई की दृष्टि दिलाते हैं। आजकल तो बहन और भाई की भी दृष्टि गंदी हो सकती है, नहीं होती है, बहुतों की होती है। हमारे पास ऐसे आते हैं युगल और कहते हैं हमको 2 दिन में जाना है, हम कहते हैं क्यों, थोड़ा रुको कुछ दिन। उनका नहीं, हमारा जवान बेटा बेटी घर में है, डर लगता है, जवान बेटा बेटी घर में है, यानी भाई बहन को भी अकेले नहीं छोड़ सकते हैं घर में। भाई बहन दृष्टि कभी भी किसकी भी बुरी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। तो बाबा ने कैसे इस माया की हमें परख दी है, माया क्या है, इन विकारों को ही माया कहेंगे। अभी इनका इतना बोल बाला है, इतना उनका ही राज्य है, रावण का ही राज्य है। इस रावण के राज्य में सब कुछ विकारों के वश ही चल रहा है। और जब बाबा ने आज कहा कि इनको तो आग लगनी है, आग लगनी है, तो जिनको ये तो कोई काम का नहीं है, और दुनिया वाले इसको कितना काम का समझते हैं। जो चीज कोई काम की नहीं होती है उसको तो आग लगाते हैं ना, कि नहीं लगाते हैं। अभी पत्ते झड़ते हैं, इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं रोड पर, तो झाड़ू लगाने वाला रोड साफ करता है और पत्तों को अलग करता है, कोने में रख देता है ढेर बना करके, फिर उनको आग लगा देता है। सवेरे सवेरे जाओ तो धुआं चारों तरफ होता है, क्योंकि वो सूखे पत्तों को आग लगा दे। तो क्योंकि बेकार है, कोई काम का नहीं है। हाँ, अगर उनको कोई खाद बनाए वो बात और चीज है, वो तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन वैसे तो कोई काम का नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर डेड बॉडी हो गया, उसको तो कोई काम का नहीं है, उसको तो जलाना ही पड़े, क्योंकि कोई काम का नहीं है। शरीर का तो चलो कोई भी प्राकृतिक वस्तु है उसका इंश्योरेंस होता है, आत्मा का तो इंश्योरेंस भी नहीं होता है। आज बाबा ने बताया वो तो अजर अमर अविनाशी है, बाकी तो सब कुछ विनाशी है, इसलिए इंश्योरेंस करते हैं कि ये टूट न जाए, गुम न हो जाए, जल न जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। तो जो विनाशी चीज है उससे एक सेकंड से कैसे मन उपराम हो जाए। बाबा की हर मुरली में विभिन्न युक्तियां आती है, तो माया भी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आधा कल्प के हम उनके मुरीद बने हैं। जिसके राज्य के अंदर हैं वो कैसे हमको छोड़ेगा, या वो कैसे हमको छोड़ के चला जाएगा। अंग्रेजों ने भी कोई ऐसे ही नहीं देश को छोड़ा, कितना परेशान किया, कितना परेशान किया, आखिर थक गए और फिर गए, परंतु देश को दो टुकड़ा करके चले गए। छोड़ा क्या, पर देश को दो टुकड़ा किया। परंतु यहां तो भगवान हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वो हमारे अंदर शक्ति भर रहा है। और हर मुरली में बाबा हमें बताते कैसे माया को जीतो, क्योंकि माया किस रूप में आएगी वो पता भी नहीं चलता है। जैसे ये आतंकवादी किस रूप में आएंगे, ये माओइस्ट किस रूप में आएंगे, कैसे आक्रमण करेंगे, कहां से अटैक करेंगे, ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार वही रूप लेकर के नहीं अटैक करते, अलग अलग रूप, अलग अलग। पहले वो बॉम्ब्स आतंकवादी रखते थे ना, तो किसी थैली में रख दिया, किसी सूटकेस में रख दिया, अभी वो कहते किसी टिफिन बॉक्स में रख दिया, किसी क्या रख दिया, कोई सोच भी नहीं सके कि टिफिन बॉक्स में कोई बॉम्ब होगा, भाई खाने पीना का सामान होगा। तो अलग अलग रूप, और अभी सब तरीके नहीं कर पाते हैं तो ह्यूमन बॉम्ब ही बन जाते, खुद ही बॉम्ब का रूप बन जाते। अब उसको कौन परखे कि ये इंसान खुद ही ह्यूमन बॉम्ब बन जाएगा आतंक करने के लिए। अपने जान की भी परवाह नहीं तो जान की परवाह तो सबको होती है। एक चींटी को भी अपनी जान की परवाह है, एक चींटी को भी आप पकड़ने जाओ तो भाग जाएगी, हाँ वो भी हाथ में नहीं आएगी, मच्छर भी हाथ में नहीं आएगा, अपनी जान की परवाह है ना। और यहाँ देखो इंसान अपनी जान की परवाह नहीं, चलो जिसको खत्म करना है उसको तो क्या, उसके बाद कारण कितने बेकसूर लोगों की हत्या हो जाती है। तो ये सब पाप का घड़ा भर रहा है, माया का अंतिम पॉम्प कैसे दिखाए। अभी ब्रिजमोहन भाई ने आपको बताया अंतिम आहुति, तो अंतिम आहुति क्या होगी, क्योंकि अंत में अंत तक माया छोड़ेगी नहीं, अंत में भी वो विकराल रूप लेगी, और वो विकराल रूप को पहचानना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कई बार बाबा कहते अभी तो माया का इतना पॉम्प और शो है, इतना आकर्षण है, क्या सुंदर सुंदर मकान है, सुंदर सुंदर चीजें, बड़े बड़े शोभनीय बातें, मोबाइल देखो क्या एक से एक बढ़कर है, क्या टीवी देखो, न जाने क्या माया का भबका है, और मनुष्य उसमें फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है ये माया है। कहते अभी तो दुनिया स्वर्ग हो गई है, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है हमारा सब कुछ, लेकिन केवल बाहर रूप में देखते हैं। हाँ जैसे कोई स्त्री अंदर वो तो बहुत काली हो लेकिन इतना मेकअप कर ले, इतना मेकअप कर ले तो बहुत सुंदर तो दिखेगी ना। परंतु हमने कई एक्टर एक्ट्रेसेस से पूछा है कि भाई इतना सारा मेकअप करते हैं तो उनकी चमड़ी खराब नहीं हो जाती है, तो कहते बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है चमड़ी खराब, क्योंकि क्या क्या वो लगाते हैं चेहरे पर, क्योंकि टीवी के सामने आना है तो बहुत सुंदर हो जाता है चेहरा, पर जितना वो सब करते हैं उसके बाद अगर विदाउट मेकअप उनको देखो ना, आप उनको पहचान भी नहीं सकेंगे, ऐसे होते हैं। और बाबा ने हमको कितनी नेचुरल ब्यूटी, पवित्रता की ब्यूटी दी है, कोई मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा की प्यूरिटी ही उसका सही मेकअप है, वही आकर्षित करती है। दुनिया में हम देखते हैं जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, तो उसका आकर्षण भी खत्म होता जाता है, जैसे अब चलो बूढ़ा है छोड़ो छोड़ो इसको। लेकिन जो अपने जीवन को पवित्र बनाता है, योगी बनाता है, महान बनाता है, जितना उसकी आयु बड़ी होती जाती है उतनी उसकी महानता भी बढ़ती है। देखो कितने संत महात्मा गुरु, जितनी उनकी बड़ी आयु उतना उनका मान भी ज्यादा, जवान सन्यासी होता है इतना मान नहीं होगा, पर बड़ी आयु वाले का इतना मान होगा। और वैसे जो संसारी मनुष्य रहा है, विकारी रहा है, जैसे बूढ़ा होता जाएगा उसको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि अपनी सारी आत्मिक शक्ति, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब शक्ति गंवा के बैठा है, और जिसने अपने जीवन को योगी बनाया है वो जैसे आयु बढ़ती उसके चेहरे पर निखार आता जाता है। हम दादियों को देखते कितनी बड़ी आयु थी, मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती थी, कभी नहीं सोचती थी मैं तो 80 साल की हो गई हूँ, मैं तो 82 साल की हो गई हूँ, मैं तो कुमारी हूँ, अपने आप को इतना वो इतनी खुशी से इतने नशे से कहती थी, क्योंकि वो कुमारी पने का वो इनोसेंस उस आयु में भी था, क्योंकि बचपन में कितना सारा जीवन उस इनोसेंस में ही रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये माया अलग अलग रूप लेकर के आएगी, माया ऐसी है न उसकी कोई तिथि है न कोई तारीख है, वो बता के भी नहीं आएगी, और हर बार अपना अलग नाम रूप लेकर के आएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो उनके धोखे से कैसे बचे, धोखा देती है, दुश्मन धोखा दे सकता है, चोर भी धोखा दे सकता है। आपने सोचा मैंने तो सब दरवाजे बंद करके रखे हैं, चोर आ ही नहीं सकता है, लेकिन कहाँ कोई वेंटिलेटर कहीं भूल से भी खुला रह गया, या कोई दरवाजा थोड़ा लूज बंद था, उसको चांस मिल गया। आजकल तो भले बंद भी हो तो भी ताला तोड़ के भी आ सकते हैं, वो खिड़की को भी वो उसकी जो शीख होती है उसको भी तोड़ के आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो आ सकते हैं। कई बार हम मकान खाली करके जाते हैं, मतलब मकान पैक करके जाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा सफर होता है, तो समझो कहीं जाना है और बहुत समय के बाद आएंगे, बिल्कुल सब टाइट पैक सब बंद करके जाते हैं, और वापस आए तो पता नहीं घर से कैसे चोरी हो गई, सब कुछ बंद था फिर भी चोरी हो गई, या चलो और कोई चोर ना भी आए, सब कुछ पैक था, कोई चोर को बहाना ही नहीं मिला, तरीका ही नहीं मिला आने का, लेकिन कीड़े मकोड़े जीव जंतु चूहे और सब मच्छर ये गंदगी वो कहाँ से आ गई, सब कुछ पैक था कहाँ से आ गई, कोई ना कोई उनको सुराग तो मिले होंगे ना, नीचे से या ऊपर से या साइड से, दीवार से, धरती से, सीलिंग से, कहीं से तो मिला और वो पहुंच गए। तो माया भी ये तरीके अपनाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बहुत मोटा रूप है, बहुत मोटा रूप है, वो तो पता चलता है, पता चलेगा कि ये मेरे अंदर विकार है और मुझे ये नहीं होना चाहिए। गुस्सा अज्ञानी इंसान भी समझता है कि गुस्सा बुरी चीज है, फिर भले अपनी बेबसी व्यक्त करेंगे कि गुस्से को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोभ है मेरे अंदर, क्या करे, गुलाब जामुन देखता हूं ना तो मेरा मुंह पानी हो जाता है, मैं टेम्पटेशन को रोक नहीं सकता हूं, अपने बेबसी व्यक्त करते हैं क्योंकि उसके वशीभूत हैं। दादा दादी अपने पोते पोती दोते दोती को देखे तो बस सारी सुध बुध भूल जाए, बेटे से प्यार नहीं होगा लेकिन वो बेटे के बेटे से बहुत प्यार होगा, पोते से बहुत प्यार होगा, क्योंकि वो तो ब्याज में मिल गया है ना, इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा होता है। आप कैपिटल अमाउंट कितना भी बैंक अकाउंट खोल के डालो, 1 लाख डालो एक ही साथ, फिर आपका 6-6 मास में आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले जब पासबुक देखेंगे इंटरेस्ट कितना मिला, हाँ वो जो अमाउंट है वो कितना बना वो बाद की बात, इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट की चीज है ना वो, आकर्षण की चीज है। तो पोते पोतियों में इतना मोह होगा, बेटे बेटियों में इतना नहीं होगा, क्योंकि वो मुफ्त में मिले है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये किस रूप से माया आएगी पता भी नहीं चलेगा, परंतु फिर भी कई समझ तो सकते हैं कि हाँ मेरा मोह है, ये मेरा लोभ है, ये मेरे अंदर क्रोध है, मेरी दृष्टि वृत्ति इतनी अच्छी नहीं है, समझ सकते हैं, माना इसको जीतना है मुझे। फिर कई कहते बहुत कोशिश तो करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, तो बाबा कहते हट से भी करो, वैसे हट से बाबा कहते हैं नहीं करो, सहज रूप से हो। सन्यासी तो हट से करते हैं, कोई ऐसी दवाई ले लेंगे तो इंद्रियों को कैसे शिथिल बना देंगे ताकि वो वासना उनके मन में ना आए, क्योंकि कोई दवाई लेते हैं। बाबा तो कहते हैं वो भी नहीं लेना है। लेकिन उस नेगेटिव को खत्म करने लिए पॉजिटिव को अपनाओ तो नेगेटिव अपने आप खत्म होगा। दुनिया में बताते क्रोध को कैसे जीतो, तो क्या बताएंगे, जब क्रोध आता है ना तो उस समय आप गिनती करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गिनती करेंगे ना तो ध्यान क्रोध से हट जाएगा। अगर क्रोध आता है ना थोड़ा पानी पियो तो क्रोध हट जाएगा। तो क्रोध आता है ना तो उस समय आप वहां से चले जाओ। अब ये तो फिर भी नेगेटिव रूप है, क्योंकि सप्रेशन करना, वो दबाना, वो भी सही नहीं है। कोई भी बात अगर आती है तो उसको दबाना भी ठीक नहीं है। कई जैसे कहते कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी पत्नी वो रो ही नहीं पाती है, तो लोग उनको कहते खास कहते रो रो रो, उसको रुलाते हैं, क्योंकि अगर रोएगी नहीं तो कहीं वो डिप्रेशन में चली जाए। इसलिए जानबूझ करके वो सप्रेशन और डिप्रेशन ये सब न हो तो जानबूझ के भी रुलाएंगे ताकि वो दबाए नहीं। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को उसका एक नेचुरल रूप बताते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल रूप हमको क्या बताते हैं, हमारे ओरिजिनल स्वरूप की याद दिलाते हैं। बच्चे तुम कौन हो, बच्चे तुम किसके हो, तुम कैसे हो, अपने अनादि और आदि स्वरूप को पहचानो। तो ये जो बाबा पांच स्वरूपों की बात कहते हैं इसमें वही याद दिलाते हैं, ये पांच स्वरूप हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, चाहे वर्तमान स्वरूप, चाहे भविष्य का स्वरूप, ये सब हमारा कितना श्रेष्ठ है वो याद करो। तो जैसे वो याद किया तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा। मेरा अनादि स्वरूप कितना पवित्र है, आदि स्वरूप कितना पवित्र है, मध्य स्वरूप जो पूज्य स्वरूप है जिसके कारण ही भक्त हमारी पूजा कर रहे हैं वो कितना पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण कितने पूज्य स्वरूप है। हर शुभ कार्य में ब्राह्मण की जरूरत होती है, हर शुभ कार्य में, बिना ब्राह्मण के कोई कार्य होता ही नहीं है। आहुति भी डालेंगे तो वो ब्राह्मण ही डलवाता है। फरिश्ता कितना पवित्र स्वरूप है, ये पांचों ही स्वरूप कितने पवित्र हैं, उस स्वरूप को याद करो, ये आपका ही स्वरूप है, तो ऑटोमेटिकली वो प्यूरिटी आएगी। बाबा कई बार कहते हैं कि पुराने संस्कार आते हैं, कहते क्या करे ये मेरा पुराना संस्कार है ना, पर पुराना ये नहीं है, ये तो द्वापर युग का संस्कार है। तुम्हारा सबसे पुराना संस्कार तो दैवी संस्कार है, सबसे पुराना संस्कार तो अनादि संस्कार है, जो आत्मा के मूलभूत गुण वो सबसे पुराना संस्कार है। ये जो संस्कार है ये तो द्वापर कलयुग में आए, सत्यु त्रेता में भी नहीं थे। तो इसलिए बाबा वो याद दिला करके वो अंतर के संस्कार जगाओ, ये बाबा हमें सिखाते हैं। अगर गुस्सा आए याद करो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, भले 10 बार कहो। ये ऐसे नहीं खाली पानी पीना है या नंबर गिनती करना है या उल्टी गिनती करना है, ये इसलिए है कि भाई ध्यान हट जाए उससे। पर ध्यान हटेगा उस समय फिर आ जाएगा, शक्ति तो नहीं आएगी ना। शक्ति तो तब आए जब वो शक्ति का चिंतन करो, शांति तब आए जब शांति का चिंतन करो। केवल मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, इससे गुस्सा नहीं जाएगा। एक मिसाल देते हैं ना, एक कहानी है, चुटकुले के रूप में ही है, कि एक व्यक्ति किसी साधु के पास गया और कहा कि गुरुजी महात्मा जी मुझे है ना, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, कुछ ऐसी युक्ति बताओ जो मेरा मन जो चंचल है ना वो बंद हो जाए। तो गुरुदेव वो साधु ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, जब भी तुम्हारा मन ऐसे बहुत यानी ये मैं आपको मंत्र देता हूँ, और जब भी कुछ हो ये मंत्र रखना, मंत्र बोलना, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ये मंत्र बोलते समय बंदर याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बंदर याद आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। अभी क्या हुआ ना? उसको कहा ये बंदर याद नहीं करना, तो बंदर ही याद आए, जब जब मंत्र बोले तब तब बंदर ही याद, नहीं तो बंदर को कौन याद करेगा, क्या पड़ी है बंदर को याद करने की, क्या संबंध है मेरा बंदर के साथ। लेकिन क्योंकि उसको कहा कि ये बंदर याद ना आए तभी आपका मन शांत होगा इस मंत्र से, तो वो तो बंदर ही याद रहता रहा। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, ये कहने से क्रोध शांत नहीं होगा, उसका कॉम्पेंसेशन चाहिए। एक किसी छोटे बच्चे के पास एक गंदी चीज है, वो गंदी चीज उससे लेनी है, ब्लेड है, चाकू है, ना कुछ ऐसी खतरनाक चीज है, खराब चीज है, लगेगी उसको, उसको नुकसान पहुंचेगा, अब वो उसे लेनी है तो कैसे लेंगे माँ, ऐसे छीनेगी तो वो तो देगा नहीं और ही अपना हाथ भी काट देगा, तो इसलिए छीनना भी गलत है क्योंकि देगा ही नहीं, जबरदस्ती तो किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। तो समझदार माँ क्या करेगी, उसकी जगह उसको कॉम्पेंसेट करेगी, बेटा देखो ये मेरे पास जो चीज है ना ये इनसे बहुत अच्छी है, और ये जो तुम्हारे पास है ना ये अच्छी नहीं है, ये देखो नुकसान करेगी, हाथ काटेगी, ये करेगी, ये देखो कितना बढ़िया है, इतना अच्छा है, इसमें देखो आवाज भी है, देखो इसको ऐसे है, वो आकर्षित करेगी अपनी चीज दिखा करके, और ये ना ये छोड़ दो, ये चीज लो। अब वो बच्चा देखेगा जो मेरे हाथ में है वो अच्छी है या ये जो माँ कह रही है वो अच्छी है, तो माँ समझाती रहेगी ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। अब वो बच्चा अपनी बुद्धि चलाएगा और फिर आखिर फाइनल करेगा, हाँ ये माँ कहती है अच्छा है, अच्छा है, तो चलो बुरा छोड़ेगा अच्छा लेगा, पर ऐसे ही माँ छीनेगी तो नहीं लेगा, नहीं देगा। तो बाबा भी देखो कितनी सुंदर युक्ति रचते हैं, कैसे इन विकारों को जीतो, विकारों को त्यागने के लिए कुछ एक अंधश्रद्धा की बात नहीं है पर बहुत समझ की बात है। मुझे याद है मैं किसी ने मुझे एक किताब दी थी तो कहा बहन जी आप ये किताब पढ़ना, उसमें वो सन्यासियों को वैराग्य लाने के लिए वो किताब थी, सन्यासियों को मना जो सन्यास लेना चाहते हैं तो कैसे उनको वैराग्य आए संसार से। तो उसमें एक उन्होंने मिसाल दिया था कि एक स्त्री है, अभी स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री सर्पणी है, स्त्री ये है वो तो सब वर्णन किया ही, परंतु यानी ये सोचेंगे तो स्त्री से वैराग्य आएगा, लेकिन साथ में क्या छोड़ दिया उन्होंने वैराग्य लाने के लिए कि एक स्त्री, एक सुंदर औरत, और फिर उस सुंदर औरत के पास उसी औरत का, उसी स्त्री का एक हड्डियों का ढांचा, और फिर कहा कि आप अगर किसी स्त्री से इतना प्यार करते हो या वासना जो कुछ कहो, पर आप किससे कर रहे हो, हड्डियों के ढांचे से कर रहे हो, ये हड्डियों का ढांचा है, ये तुमको नरक में ले जाएगा, इसीलिए इनसे बचो, स्त्री से बचो। तो उस समय मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा केवल स्त्री का ही हड्डियों का ढांचा है, पुरुष का नहीं है क्या? पुरुष का भी तो है ना? तो हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के ढांचे के से ही आकर्षित हो रहा है, पर बाबा तो कहते हड्डियों का ढांचा क्यों अपने को समझो, आप तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और उसको भी अजर अमर अविनाशी आत्मा देखो, आप हड्डियों का ढांचा क्यों देखो, वो भी महान है, आप भी महान हो, वो भी महान है, आप उसको उस महानता की नजर से देखो, खुद को भी कोई कम नहीं देखो, आप भी वो महान हो। तो वो महानता की दृष्टि से देखेंगे तो हमारी दृष्टि कितनी ऊंची हो जाएगी। और आज बाबा ने एक वाक्य में बहुत सुंदर बात बताई जिससे सहज ही माया के धोखे से बच सकते हैं। क्या बताया बाबा ने, क्या शब्द दिया याद है? इच्छा मात्रम अविद्या। माया के धोखे से बचने का बहुत सुंदर आधार इच्छा मात्रम अविद्या। वो इच्छा की अविद्या हो जाए, पर इच्छा की अविद्या कैसे होगी? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये इससे नहीं होगी। मैं एक पुस्तक एक बार पढ़ रही थी, सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर होकर के गए हैं। तो सोक्रेटिस बहुत बड़े विद्वान थे, फिलोसोफर थे, लेकिन उसने अपने अंदर बहुत वैराग्य लाया। वैराग्य लाया कैसे लाया? वो जाता था रोज, दुकानें सामान से भरी हुई होती थी, उनका जो शोरूम होगा माना जो आगे का स्थान होता है उसमें सब सामान दिखाते हैं कि इस दुकान में ये चीजें मिलेगी। तो रोज जाता था और वो दुकान का जो जहां शीशे में सब चीजें होती है वो देखता रहता था, रोज रोज देखता था, एक एक दुकान का बाहर से देखता रहता था और फिर चला जाता था। तो दुकानदार भी इसको देखते थे, ये रोज आता है खाली देखता है और अपना समय बिताता चला जाता है, तो क्या इसको खरीदने की इच्छा है पर ये खरीद नहीं रहा है क्योंकि पैसा नहीं होगा, या क्या पता क्या ढूंढ रहा है, इतना टाइम अपना दे रहा है तो खरीदता क्यों नहीं, क्या चाहिए आखिर इसको? तो एक बार एक दुकानदार ने इसको पूछ ही लिया जब वो देखता रहा, तो उसने कहा आपको कुछ खरीदना है? आप ले लो, कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लो, आपको मैं रोज देखता हूँ, आप यहाँ आके खड़े हो जाते हो और सब देखते रहते हो, तो आपको जो चाहिए आप ले जाओ। तो उसने कहा मुझे लेना नहीं है। तो कहा लेना नहीं है फिर इतना टाइम क्यों यहाँ गंवा रहे हो देखने में, है ना? कोई मॉल में जाते, रोज मॉल में जाए खाली चीजें देख के, खरीदे कुछ नहीं, तो टाइम वेस्ट है ना भाई, तुमको जो खरीदना है वो बोलो ना। कई बार होता है क्या खरीदना वही पता नहीं, शायद देखेंगे तो पता चलेगा क्या खरीदना है, नहीं तो बस जा रहे हैं थैला लेके जाएंगे। तो जब उससे पूछा कि क्यों नहीं खरीदते हो, क्या बात है आपके पास पैसा नहीं, हम दे सकते, आप ले जाइए, अपनी इच्छा को मारिए मत, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप ये देख क्यों रहे हो? तो कहा कि मैं अपनी परीक्षा ले रहा हूँ, परीक्षा यानी क्यों देख रहा हूँ, अपनी परीक्षा ले रहा हूँ कि क्या ये जो चीज है इसके बिना मैं चल सकता हूँ। तो मैं अपने अंदर में पूछता हूँ मैं चल सकता हूँ इसके बिना? तो अंतरात्मा कहती है चल सकते हो। फिर ये देखता हूँ इसके बिना मैं चल सकता हूँ, हाँ चल सकता हूँ, चल सकता हूँ। तो ये जो भी मैं देखता हूँ मैं अपनी परीक्षा लेता हूँ कि मैं क्या इनके बिना चल सकता हूँ। तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी इच्छाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे पता चले कि मेरी इच्छा नहीं है? वो चीज देखूं और मेरी आसक्ति न जाए तब कहूँ ना कि इच्छा नहीं है, क्योंकि देखूं और इच्छा हो जाए तो माना न देखूं और इच्छा तो होगी, पर देखूं और फिर भी इच्छा न हो, जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो, आंखें नहीं बंद करनी है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, इसको कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। ये एक रूप है, और दूसरा रूप भी है इच्छा मात्रम अविद्या का, वो है कि आत्मा इतनी अंदर से भरपूर है। अभी वो बता रहे थे ना हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, 7 दिन तक 8-9 दिन वो नवरात्रि के व्रत रखता है, वो केवल पानी पर जीता है, केवल पानी, और अमेरिका गया था। आप सोचो अमेरिका गया, अमेरिका में राष्ट्रपति ने भोज रखा, ये रखा वो रखा, वो सब खा रहे और ये नहीं खा रहा है, उसकी तो आंख में नहीं डूबी। तो क्या प्रशंसा उनकी हुई कि इनके पास जो विल पावर है वो हम लोगों में भी नहीं है ना, एक कहने की बात है, क्योंकि उसकी आंख गई नहीं और काम कितना किया, क्या नहीं किया, लेकिन केवल पानी पर रहा। वहां का एक दाना भी खाके नहीं आया कोई ऋण लेकर आया जो उसका नमक वो हलाल बनना पड़े या उनके उनके आगे झुकना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो भाई उनका नमक खाया है तो उनके आगे झुकना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। यानी कहने का भाव ये है कि आंख भी न जाए, कानों से भी क्या सुनने की भी बात नहीं है, जो मेरे काम की चीज ही नहीं है वहां कान जाए क्यों, आंख जाए जाए क्यों जहां मुझे कुछ लेना नहीं है। और आंख में तो बाबा कहते हैं एक आंख में रखो मुक्ति, दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। बस ये दो बातें अगर हमारी आंखों में होंगी तो और आंखों में को दिखाई नहीं देगा। कई बार मम्मा का ऐसा मिसाल देते हैं, हमारे रमेश भाई निर्वैर भाई ये मिसाल देते हैं मम्मा का, कि एक बार मम्मा बॉम्बे में आई थी तो बॉम्बे तो चकाचौंध, खूब लाइटें वाइटें बहुत कुछ थी, तो बहुत सुंदर एक कोई साइन बोर्ड था कुछ था, तो गाड़ी में जा रहे थे तो रमेश भाई ने मम्मा को कहा मम्मा वो आपने देखा ऐसे हम अपना भी साइन बोर्ड ऐसे बना सकते हैं, ऐसा हम अपना बना सकते हैं। वो तो अच्छे भाव से कहा क्योंकि पता चले ताकि हम भी वो कॉपी कर सके, हम लोग कुछ उस रूप से बना सके। लेकिन मम्मा बिल्कुल न्यारी रहती थी, इतनी न्यारी रहती थी, तो जब मम्मा को कहा मम्मा वो आपने देखा वो साइन बोर्ड ये कितना अच्छा था हम अपना साइन बोर्ड ऐसे बनाए, मम्मा ने कहा क्या 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 कह रहे हो मम्मा, वो जो इतना बड़ा था वो आपने देखा नहीं। मम्मा ने कहा मैंने तो देखा ही थी, मैं तो देखा ही नहीं, क्योंकि मम्मा तो अपनी मस्ती में रहती थी, हर वक्त देखो अपनी मस्ती में रहती थी, यहाँ वहां इधर उधर उधर कभी नहीं मम्मा की आंखें गई, कोई बोल भी रहा है ना मम्मा का ध्यान कभी नहीं जाता था जब तक वो मम्मा के पास आकर के मम्मा को कुछ न सुनाए, बाकी मम्मा को क्या पड़ी है, मम्मा तो अपने चिंतन में मस्त रहती थी। तो जब बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि नहीं देखो नहीं सुनो ऐसे नहीं कहा, हियर नो ईविल सी नो ईविल टॉक नो ईविल ये तो है, पर उसके लिए बाबा कहते हैं थिंक नो ईविल भी तो है, क्योंकि अगर मन में है तो सब जगह ध्यान जाएगा। तो कैसे इच्छा मात्रम अविद्या, ये इतनी ऊंची शिक्षा है जो अभी संगम पर अगर हम धारण करते हैं तो हम तो समझते हैं प्रकृति अपने आप दासी बन जाती है। सच पूछो तो, सच पूछो, कई लोग हम कई बार सुनाते हैं कि लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का त्याग बड़ा जबरदस्त है, आप लोग पिक्चर नहीं देखते हो, आप लोग गहने नहीं पहनते हो, आप लोग कहीं किसी का खाते नहीं हो, आप मतलब ये तो ये हमारे से नहीं होगा, ये आप लोगों का त्याग बहुत जबरदस्त है, हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते त्याग क्या है, हम भी तो बहुत बढ़िया खाते हैं, कोई मना थोड़ी करते हैं बाबा, ऐसे थोड़ी हम कोई फटे पुराने कपड़े पहनते, बहुत अच्छे सफेद कपड़े पहनते हैं, कितने स्वच्छ, आप तो पता नहीं दो तीन दिन का वही पहना होगा, हम लोग तो रोज स्वच्छ पहनते हैं हा? फिर आप लोग गहने नहीं पहनते, हम पहनते क्या जरूरत है हमको, किस कोई आकर्षित हो जाए या डर ही बना रहे कि पता नहीं कोई हमारा ले न जाए ले न जाए। हाँ एक का मिसाल देते हैं कि एक औरत थी उसको हीरे की अंगूठी थी, हीरे की सबको दिखाई, देखो मेरी हीरे की अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी। वो एक दिन ऐसे जा रही थी, कोई आया उसकी उंगली काट ली और हीरे की अंगूठी लेके भाग गया, उंगली काट ली वो तो हैरान हो गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हीरे की अंगूठी कोई ले गया, बहुत धन रखते और ऐसे छिपाते लोग, तो आज पता नहीं क्या एक्सरे मशीनें उनके पास होती है या कैसे परखते, फटाफट काटा और ले गया, पता भी नहीं चला, चेन खींच लिया पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चलता है, इतना आज आजकल लोग होशियार हो गए, तो अंदर डर ही डर बैठा रहता, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो कहते आपका त्याग बहुत, हम कहते त्याग नहीं है, हम तो और ही मस्त है, हमारी दादी जानकी कहती है हमारे पास कोई पर्स भी नहीं है, मोबाइल वोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो हाथ खाली जेब खाली और मैं दुनिया का राजा, ये ऐसे कहती है। यानी इस कलयुगी दुनिया की इच्छाएं जो हमें माया के वश कर सकती है, बाबा कहते हैं इनसे न्यारे रहो। हाँ, आवश्यकता अनुसार क्यों नहीं है, वो तो जरूरी है, बाबा मना नहीं करते हैं, क्योंकि फिर अंदर में त्याग है ना तो अपने आप भाग्य बनता है। कई लोग फिर हम लोगों को बड़ा पॉजिटिव रूप में देखकर कहते हैं आप लोग कितने लकी हो, हम लोगों को कहते कितने भाग्यशाली हो, कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितनी ऊंची आपकी सेवा है, कितने आप खुश रहते हो, कितने आप कितने मुस्कुराते रहते हो, सचमुच आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। तो कोई कहते आप लोगों का बड़ा त्याग है, हम नहीं सहन कर, हम नहीं कर सकते, और कोई कहते बहुत भाग्यशाली हो। तो अब ये तो दोनों कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो क्या कहेंगे, त्याग बहुत है या भाग्य बहुत है, है? क्या बहुत है, भाग्य। परंतु याद रखना, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलेगा। इसीलिए त्याग है तो भाग्य है, बिना त्याग के नहीं। बस वो अगर बुद्धि में आ जाए, त्याग भी जबरदस्ती नहीं, मुझे तो त्याग करना है, मैंने तो त्याग किया है, मैंने तो त्याग किया है। बाबा कहते त्याग का भी त्याग हो, मैंने त्याग किया ये वर्णन भी न हो। अगर ये वर्णन होता है ना, मैंने त्याग किया, वो भी त्याग नहीं है, क्योंकि बुद्धि से तो त्यागा ही नहीं है। बुद्धि से ही त्यागा नहीं है तो बाकी क्या त्यागा। जैसे कोई व्यक्ति दान करे और वर्णन करता रहे, मैंने इतना दान किया, तो भले दान किया पर बुद्धि में भरा हुआ है वो धन, अभी भी जैसे उसके पास ही है, क्योंकि बुद्धि से तो निकला ही नहीं है ना। कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल, याद थोड़ी करना होता है, एक बार दान किया फिर तो याद भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, हाथ से गया, फिर ये मेरा नहीं है। इसी को कहा आहुति, आहुति को पकड़ के रखेंगे या ये गिर गया, उठाएंगे क्या वापस, वो गया सो गया। तो कोई सोचते ही रहते हैं, कोई तो करते भूल जाएंगे, कोई तो करते हैं फिर सोचते हैं, कोई तो सोचते ही रहते करे पर करते नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं माया से बड़े सावधान रहो, क्योंकि ये माया के सूक्ष्म रूप भी कैसे आते हैं पता भी नहीं चलता, बहुत इसका विस्तार है। पर अपने को पढ़ाओ, अपने को सिखाओ, कोई दूसरा आपको बताए सिखाए ये नहीं होगा, खुद को करना होगा। बाबा तो कितना मुरलियों में कहते, क्या नहीं कहते हैं, एक एक मुरली कितनी शिक्षा सावधानी से भरी पड़ी है, आज्ञाओं से भरी पड़ी है, कितना हम उसका पालन करते हैं वो हम अपने आप से पूछें। तो देखो बड़े भाग्यशाली हो, बाबा से मिलने के लिए पहुंच गए हो दूर दूर से, कर्नाटक के तो सुना 10,000 से भी ऊपर आए हैं, कितना दूर से आए हैं। तो जहां से भी आए हो बहुत बहुत मुबारक हो, नहीं भी बहुत आए हैं, नयों के लिए तो बाबा कहते हैं लेट आए हो पर टू लेट अभी भी नहीं है। बाबा बहुत प्यार करते हैं फर्स्ट टाइमर्स को या पहली बार आने वालों को, क्योंकि बहुत भाग्यशाली हो। आगे चल के क्या होगा वो तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए जितना लूटना चाहो लूटो, हाँ भगवान से लूटो, तो भगवान से रतन धन ज्ञान धन शांति धन प्रेम धन खुशी धन शक्ति धन, ये सब लूटने के लिए इतने सारे बच्चे आ गए हैं ना। लूटो, बाबा को लूटो भले, पर जितना लूटेंगे उतना न बाबा का खत्म होगा न आप संतुष्ट होंगे, वो भी देखो। इसमें भले असंतुष्ट रहो कि जितना लूटना चाहो लूटो, बाबा ने भंडारे खुले रखे हैं सब गुणों के शक्तियों के वरदानों के, आशीर्वाद के और बाबा की मुरली से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति।